हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24 के आगे स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसः संकल्प प्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली लाइन अगर आप देखें, संकल्प और श्रद्धा, अगर व्यक्ति का संकल्प नहीं है तो व्यक्ति भक्ति की कोई भी क्रिया को या योगाभ्यास की किसी भी क्रिया को नहीं करेगा। और संकल्प जब होता है तभी व्यक्ति कुछ कार्य करता है, चाहे वो मुश्किल कार्य हो चाहे आसान कार्य हो। अगर संकल्प नहीं होता है तो व्यक्ति सुबह उठ के स्नान भी नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि योगाभ्यास के लिए व्यक्ति का संकल्प होना जरूरी है। और अगर हम संकल्पित नहीं है, हमारे जीवन में संकल्प नहीं है, तो हम पशु के समान हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमको योग अभ्यास में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई और हम बस कल से योग अभ्यास छोड़ दें या भक्ति का अभ्यास छोड़ दें। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको 10 साल हो गया या 15 साल हो गया, हमारा मन नहीं लगता है। अरे कितने अरबों जन्मों से, कितने अरबों युगों से, कितने अरब ब्रह्मा जी के ये जीवन बीत गए हम इस जगत में हैं। तो कितना संस्कार, कितनी गंदगी पड़ी हुई है हृदय में, ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 10-5 साल के भजन में क्या हो जाएगा। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को लगातार योगाभ्यास करते रहना चाहिए इस श्रद्धा के साथ कि इसी के द्वारा मेरी सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि पथ से विचलित ना हो। और भगवान की कृपा में भी श्रद्धा होना चाहिए कि मैं भक्ति का अभ्यास कर रहा हूं तो भगवान निश्चित रूप से मुझ पर कृपा करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग है, मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को त्यागना। मतलब मनोधर्म का मतलब क्या होता है, मन, ये हमारे मन के द्वारा एक प्रकार का इल्यूजन, एक प्रकार का जादुई नजारा कह सकते हैं, हमारे मन में प्रस्तुत होता है माया के द्वारा कि भोग के द्वारा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और जबकि भगवान गीता में बोलते हैं यही संस्पर्श जा भोग का दुख योनि एवते, जो भोग हैं वही दुख की योनि है, दुख का स्रोत है। तो व्यक्ति इस प्रकार से मन बहुत सारी बातें बोलेगा लेकिन बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है, अरे तुम यहां सोच रहे हो कि आज भोग मिलेगा लेकिन आगे इसका परिणाम क्या है विचार करो। और इस प्रकार से मानसिक फैक्ट्री, इस मन की फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पन्न इच्छाएं हैं इनको व्यक्ति त्याग देता है, आहार निद्रा भय मैथुन की। और जब मन इन इच्छाओं से विरक्त हो जाता है तो मन के द्वारा इंद्रियों को हम वश में करते हैं। जैसे कि अभी मेरी इच्छा हुई कि मैं ये रिकॉर्डिंग करूं, तो मैं अपने मन के ही द्वारा अपनी जीभ को संचालित कर रहा हूं और मन में जो विचार आ रहे हैं वो जीभ के द्वारा, गले के द्वारा वो प्रकट हो रहे हैं। तो अगर मन में संकल्प आ ही नहीं कि मुझे क्लास देनी है तो फिर मैं अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाऊंगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाऊंगा। तो यानी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि मन में आने वाली जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी वैल्यू को समझते हुए उनके एडवर्टाइजमेंट को हम स्वीकार ना करें। जैसे कहा जाता है दिखावों पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। तो अब ये अकल है जो इंटेलिजेंस है वो शास्त्रों से सुन करके हमें लगानी चाहिए कि भाई भोग करके ना तो मैं आज तक सुखी हुआ हूं और ना आगे सुखी होऊंगा, बल्कि कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी होऊंगा, भले ही वो सुख मुझे इस समय प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान ने बोला संकल्प और श्रद्धा के संग, इस समय भले ही वो उतना सुख हमको प्राप्त भक्ति का नहीं हो रहा है, लेकिन ये भगवान जैसा बोल रहे हैं, हमको पिछले श्लोक में बताया था जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी तो उस असीमित भक्ति के सुख का हम अनुभव कर पाएंगे। तो इसलिए श्रद्धा के संग व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। अंत में उसकी सफलता निश्चित है और उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अपने भक्ति के जीवन में हम उत्साह कैसे मेंटेन करें। साधना भक्ति में हम शरीर के द्वारा उन कार्यों को करते हैं जिसके द्वारा हमारा मन प्रभावित हो। तो शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है। तो इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये आप अपने स्तर से सीखने का प्रयास करिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, नींद पूरी हो, समय से हम खाना खाएं और समय से सोएं। इसके बारे में भगवान ने पहले भी बताया था, युक्त आहार विहारस्य, इससे शरीर का कॉपरेशन रहेगा हमारी साधना में। और साथ साथ ऐसे लोगों का संग करें जो साधना करने के लिए प्रवृत्त हैं, इंक्लाइंड हैं, तो वो इंक्लिनेशन हमारे हृदय में भी आ जाएगा और हमको कह सकते हैं उत्साह रहेगा भक्ति करने के लिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति इस बारे में भगवान ने पहले भी बोला था, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, बहुत जल्दी जो व्यक्ति लगातार अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, बहुत जल्दी उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चया धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर् भक्तिः प्रसिद्धति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग को पूर्ण रूपेण पालन, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्य में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें लिखा है षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, ये छह क्रियाएं हैं। क्या क्या क्रियाएं हैं? उत्साह, ये मन का उत्साह है, निश्चय मन में निश्चय होता है, धैर्य मन में होता है, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् ये इंद्रियों के कार्य हैं। ये जो तीन चीजें हैं शुरुआत की, ये मनोभावना है, मन में उत्साह होना चाहिए, मन में धैर्य होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए, तभी हम भगवान के सच्ची रूप से शरणागत भक्त कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक दिन हमको उत्साह आया, दो दिन हमने उत्साह आया नाम जब किया, अरे उसके बाद तो हमारे कोई पर हमें तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ नहीं दिखता है, बस बंद कर दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। और केवल धैर्य से भी काम नहीं चलेगा, हाँ हाँ हमको धैर्य है, सो सो के जप कर रहे हैं, रो रो के जप कर रहे हैं, सो सो के जप कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तो हो भी जाएगा लेकिन बहुत स्लोली होगा। इसलिए तीनों का सम्मिश्रण करना है, और ये क्रियाएं मन की हैं, उत्साह मन का होता है, धैर्य भी मन में हम धरते हैं और निश्चय भी मन के द्वारा करते हैं, संकल्प। तो इसके द्वारा करते क्या है, इन तीनों के संग, इस तीनों से मिश्रित मनोभावना के संग तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति के कर्म है, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन इत्यादि जो भी है नवदा भक्ति, उसमें व्यक्ति को लगना चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमारी फीलिंग्स क्या है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यहां क्या बोल रहे हैं, उन कर्मों में प्रवृत्त होइए उत्साह के साथ। और उत्साह भक्ति की महिमा सुनने से भी आता है, शास्त्रों से, जैसे हम सुनते हैं एक नाम से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वो ध्यान पूर्वक किया जाए, चाहे ध्यान पूर्वक किया जाए, कैसे भी किया जाए, तो व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है हरि नाम करने के लिए। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे गौरैया का आदर्श ग्रहण करे, जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी, तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहिन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग, अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रायः इस समाज में लोग कहते हैं हमारे गुरु जी करेंगे, कोई मसीहा आएगा हमें करने के लिए। गुरु जी हमें मार्ग बताते हैं, लेकिन चलना हमको स्वयं पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि हमारा उद्धार कर दीजिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे होगा इस मार्ग को तुमको बता सकता हूं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु का कार्य है उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी जो होते हैं, गुरु होते हैं, वो उनको बताते हैं हमारे संबंध के बारे में भगवान से हमारा जो है, लेकिन अभिधेय वो हमारे लिए नहीं करेंगे, अभिधेय हम सबको स्वयं करना पड़ेगा। इंग्लिश शब्द में कहेंगे वी हैव टू अर्न आवर ओन रियलाइजेशन, अपना साक्षात्कार हमको स्वयं ही अर्जित करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें गुरु की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन कृपा की याचना के साथ साथ हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे कि दामोदर लीला में हम सुनते ही हैं, भगवान कृष्ण क्यों बंधे, यशोदा मैया का जब प्रयास पूर्ण हुआ और जब भगवान की कृपा पूर्ण हुई तब भगवान बंधे। उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण हो और प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि खाली प्रयास मात्र से हमें भगवान का स्मरण नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे उत्साह के संग, संकल्प के संग, धैर्य के संग, तो भगवान की कृपा से भगवान स्वयं हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेंगे और फिर कोई मुश्किल नहीं रह जाएगी भगवान का स्मरण करने के लिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवात्मा भगवान को भगवान की इच्छा के बिना भुला भी नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, इसलिए भगवान अपनी शक्ति का उपयोग करके हमको ये सुविधा देते हैं जिसके द्वारा हम उनको भूल पाए। लेकिन बार बार हम जब हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भगवान का हृदय भी द्रवित हो जाता है और भगवान अपनी ही कृपा से हमारे हृदय में प्रकट होंगे एक दिन और अपने पूरी सौंदर्य के संग, अपनी पूरी शक्ति के संग, और फिर कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी भक्ति करने में। लेकिन इसके लिए हमें संकल्प संग करना चाहिए और ये आवश्यक है कि इसके लिए हम नियमित रूप से सुने। जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो इस प्रकार का संकल्प हमारे जीवन में बना रहेगा। हरे कृष्णा।